जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
विष्णुपाद परमहंस प्रयोगराजकाचार्य अष्टोदर्शी डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस प्रयोगराजकाचार्य अष्टोदर्शी डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड श्री गिरी गोवर्धन की। श्री वृंदावन मथुरा धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की। गंगा मैया यमुना मैया की। భక్తి దేవి తులసి మహారాణికి సమవేత్ గౌర భక్త వృందకి నితాయి గౌర ప్రేమానందే హరి హరి బోల్. ఆల్ గ్లోరీస్ టు అసెంబ్లీ డివోటీస్ హరే కృష్ణ. ఆల్ గ్లోరీస్ టు అసెంబ్లీ డివోటీస్ హరే కృష్ణ. ఆల్ గ్లోరీస్ టు అసెంబ్లీ డివోటీస్ హరే కృష్ణ. ఆల్ గ్లోరీస్, ఆల్ గ్లోరీస్, ఆల్ గ్లోరీస్ టు శ్రీ గురు అండ్ శ్రీ గౌరంగ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. హరే కృష్ణ. ప్రజంపట్రి శ్రీమద్ భాగవతం స్కంద్ 5 అధ్యాయ 1 శ్లోక క్రమాంక 37. तो ये जो श्लोक है ये इसको मैं गाता हूँ. अहो असाधु अनुष्ठितम यत् अभिनिवेशित अहम इंद्रियै अविद्या रचित विषम विषय अंधकूपे तत अलम अलम अमुष्य वनिताया विनोद मृगम माम धिक् धिक् ఇది గర్హ్యాం చకార. తో హమ్ ఇస్కా యే శబ్దార్థ మేరే పీచే దోహరాయే. అహో ఓహ్ అసాధు ఇచ్ఛా నహీ అనుష్ఠితం హువా యత్ క్యోంకి అభినివేశితః పూర్ణతయా నిమగ్న అహం మై ఇంద్రియైః ఇంద్రియ భోగ్ కే లియే అవిద్యా అజ్ఞాన్ సే రచిత బనాయా హువా విషమ దుఃఖదాయి విషయ ఇంద్రియ భోగ్ అంధకూపే అంధరే కువే మే తత్ वह अलम तुच्छ अलम महत्वहीन या अधम का अमुष्या उस वनितायाः पत्नी का विनोद मृगम नाचते हुए बंदर की तरह माम मुझको धिक धिक्कार है धिक धिक्कार है इति इस प्रकार గర్హ్యాం ఆలోచనా చకార్ కీ. భాషాంతర్. రాజానే అప్ని భర్త్సనా ఇస్ ప్రకార్ కీ. ఓహ్ ఇంద్రియ భోగ్ కే కారణ మై కితనా ధిక్కార్ జానే యోగ్య హో గయా హూ. మై అబ్ భౌతిక సుఖ్ కే అంధకూప్ మే గిర్ గయా హూ. బహుత్ హువా అబ్ ముజే ఔర్ భోగ్ నహీ చాహియే. తనిక్ మేరీ ఔర్ దేఖో मैं कैसे अपनी पत्नी के हाथों में नाचने वाला बंदर बन गया हूँ. इसलिए मुझे धिक्कार है. तात्पर्य, महाराज प्रियव्रत के आचरण से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भौतिक ज्ञान की उन्नति कितनी निंदनीय है. उन्होंने एक दूसरा सूर्य उत्पन्न करने जैसा अद्भुत कार्य किया जो रात के समय प्रकाशमान था. उन्होंने ऐसा विशाल रथ तैयार कराया था जिसके पहियों की रगड़ से विशाल समुद्र बन गए थे. ये कार्य इतने महान है कि आज का वैज्ञानिक यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसे कार्य किस प्रकार संपन्न हो सकते हैं. महाराज प्रियव्रत ने भौतिक क्षेत्र में अत्यंत अद्भुत कार्य किए, किंतु चूंकि वह इंद्रिय भोग अर्थात राज्य के शासन तथा सुंदर पत्नी के इशारों पर नाच रहे थे, इसलिए इन्होंने अपने आप को धिक्कारा. जब हम महाराज प्रियव्रत के इस उदाहरण पर विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि भौतिक प्रगति की आधुनिक सभ्यता कितनी पतित है. आधुनिक तथाकथित वैज्ञानिक तथा अन्य भौतिकवादी यह सोचकर अत्यधिक संतुष्ट है कि वे बड़े बड़े पुल सड़कें तथा मशीनें बना सकते हैं, किंतु महाराज प्रियव्रत की तुलना में ये सारे कार्य नगण्य है. यदि इतने अद्भुत कार्यों के बावजूद महाराज प्रियव्रत अपने को धिक्कार सकते थे तो हम भौतिक सभ्यता की तथाकथित प्रगति में कितने अधम और निंदनीय है. इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भौतिक जगत में फंसी हुई जीवात्माओं की समस्याओं को ऐसी उन्नति से कोई सारोकार नहीं है। दुर्भाग्यवश आज का मनुष्य अपने बंधन और निंदनीय स्थिति को नहीं समझ सकता है और उसे यह भी पता नहीं है कि अगले जन्म में उसे किस प्रकार का शरीर धारण करना होगा। महान राज्य, सुंदर पत्नी तथा अद्भुत भौतिक कार्यकलाप, यह सभी आत्मसिद्धि के बाधक है। महाराज परिव्रत ने अत्यंत निष्ठा के साथ महामुनि नारद की सेवा की थी, अतः भौतिक ऐश्वर्य स्वीकार कर लेने पर भी वे कर्म से विचलित नहीं हुए। वे पुनः कृष्ण भक्त बन गए, जैसा कि भगवद्गीता अध्याय दूसरा श्लोक क्रमांक 40 में पुष्टि की गई है। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कृष्ण भावनामृत के लिए जो कुछ भी साधन किया जाता है उसका न तो कभी नाश होता है और न ह्रास। इस पथ पर की गई थोड़ी भी सेवा भी बड़े से बड़े संकट से बचाने के लिए पर्याप्त है। महाराज प्रियव्रत के जैसा संन्यास श्री भगवान के अनुग्रह से ही संभव है। सामान्य रूप से जब मनुष्य शक्तिमान होते हैं या उनके सुंदर पत्नी, सुंदर घर तथा भौतिक ऐश्वर्य होते हैं तो वे अधिकाधिक फंसते जाते हैं, किंतु महाराज प्रियव्रत ने देवर्षि नारद से शिक्षा प्राप्त की थी, इसीलिए तमाम बाधाओं के होते हुए भी वे अपने भीतर कृष्ण भावनामृत को पुनर्जीवित कर सके। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में। आज इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं सभी वैष्णवों से कृपा आशीर्वाद की याचना करता हूँ, विशेष करके आचार्य रत्न प्रभु और सरलक्षण प्रभु, महावीर प्रभु और बाकी सभी वैष्णव। तो ये बहुत ही श्रीमद् भागवतम है, ये तो मतलब चर्चा की जाती है इनके द्वारा जो परमहंस है। तो ऐसे की सेवा करके मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ इसके ऊपर हम समझ पाए या फिर जो मेरे शुद्धिकरण के लिए मदद हो पाए। तो आप सभी से मैं आशीर्वाद की याचना करता हूँ। तो आज पढ़ रहे स्कंद 5 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 37। तो इस अध्याय का नाम है महाराज प्रियव्रत का चरित्र। तो अभी तक हमने जो सुना है कि कैसे कि जो महाराज प्रियव्रत थे, है ना, वो सारे सांसारिक ऐश्वर्य से दूर रहकर जो क्या कर रहे थे, नारद मुनि के सेवा में लगे थे और वहाँ पे वो बहुत ही आनंद से थे। लेकिन एक सेवा आ गई और वो सेवा के कारण उन्हें फिर गुरु की आज्ञा से क्या किया उन्होंने, और भगवान के आशीर्वाद से उन्होंने वो जो एक उनके लिए जो कठिन लग रहा था वो सेवा उन्होंने किया था। वो क्या था कि वो ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ मतलब, तो अभी ये जब उन्होंने फिर वहाँ पे उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया, जैसे कि एक समय पे इस ब्रह्मांड की रचना में उन्होंने एक महान कार्य किया। उनके रथ के द्वारा उन्होंने 7 द्वीप बनाए और 7 उतने समुद्र बनाए मतलब। तो ऐसे इस इतना महान कार्य प्रियव्रत महाराज कर चुके हैं और वो भगवान की भक्ति में भी है, लेकिन आज के श्लोक में वो देख रहे, वो क्या बोल रहे हैं, राजा ने अपनी भर्त्सना की, मतलब खुद को ही डांट रहे हो खुद को ही। तो पहले तो हम देखेंगे कि किस तरह प्रभुपाद जी बता रहे कि राजा ने ऐसी भर्त्सना क्यों की, क्योंकि प्रभुपाद तात्पर्य पहले इसमें लिखते हैं कि महाराज प्रियव्रत के आचरण से अनुमान लगाया जा सकता है कि भौतिक ज्ञान की उन्नति कितनी निंदनीय है। तो उन्होंने इस तरह से विकास किया था मतलब अपने साम्राज्य का वगैरह, लेकिन इतना करने के बाद भी उनको क्या लग रहा था, वो लग रहा था कि ये भौतिकवादी कार्य हो गए। और जो प्रभुपाद जी है प्रिफेस या आमुख में बहुत बार बोलते हैं कि इस समय मानव समाज की विस्मृति के अंधकार में नहीं है, लेकिन फिर बोल रहे इसके समग्र विश्व में भौतिक सुविधाएं शिक्षा तथा आर्थिक विकास के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है, किंतु इस समाज में इस विराट उप में कहीं ना कहीं कुछ चुभन है। तो इंग्लिश में प्रभुपाद बोलते हैं देयर इज अ पिन प्रिक, मतलब बहुत कुछ एडवांसमेंट हो चुका है, प्रगति हो चुका है, लेकिन कहाँ पे तो चुभन लग रहा है। क्यों? जिससे छोटी छोटी बातों पर भी व्यापक रूप से झगड़े हो रहे हैं। अतः ऐसे दिशाबोध की आवश्यकता है जिससे सामान्य हित के लिए मानवता शांति मैत्री तथा समृद्धि के क्षेत्रों में एक हो सके। और वो कैसे होता है? श्रीमद् भागवत से इस आवश्यकता की पूर्ति होगी, क्योंकि यह समग्र मानव समाज के पुनः आध्यात्मिकरण के लिए एक सांस्कृतिक भेंट है। तो प्रभुपाद जी बता रहे किस तरह से इस भौतिक जीवन में क्या हो जाएगा कि बार बार वो समस्या आती रहेगी, लेकिन इसका उत्तर क्या है, एक ही है, वो क्या है, किस तरह से हम श्रीमद् भागवतम को उसको समझें। अब ये श्रीमद् भागवतम में ये बार बार बताया जाएगा कि किस तरह से अलग अलग भक्तों ने भक्ति करने का प्रयास कर रहे थे, उनके जीवन में किस तरह से समस्याएं कष्ट आ गए, और वो कष्ट में भी उन्होंने लेकिन उनके अनुभव के साथ उनके इसके साथ कैसे उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, है ना। तो जैसे कि इस श्लोक में हम देख रहे कि यहाँ पे वो धिक्कार कर रहे, अलम अलम मतलब बार बार बोल रहे, मतलब बस अब बस बोल रहे, अभी बस क्या बस बोल रहे, धिक धिक धिक्कारे बोल रहे। क्यों धिक्कारे बोल रहे? क्योंकि बोल रहे कि मैं इंद्रिय भोग के कारण क्या हो चुका हूँ, इस अंधकूप में गिर चुका हूँ, बहुत हो गया बोले, और मुझे भोग नहीं चाहिए। देखो मेरी तरफ देखिए बोलते कि मैं किस तरह अपने पत्नी के हाथ में क्या बन चुका हूँ, विनोद मृगम मतलब क्या बन चुका हूँ, एक पत्नी के हाथों में नाचने वाला बंदर। तो प्रभुपाद यहाँ पे विनोद मृग को बंदर बोला। तो ये अभी एक प्रियव्रत महाराज जो है वो एक तो एक भक्त है, बहुत ही शुद्ध भक्त है, तो इसी के लिए उनके द्वारा ये अभी जब ये बोल रहे तो हम थोड़ा सा समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर हम भौतिक दुनिया में देखेंगे तो इस दुनिया में ये नॉर्मल हो चुका है, नॉर्मल है कि व्यक्ति क्या होता है अपने पत्नी के द्वारा नाचा जाता है ना, जिस तरह से जो इसके में हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में भी है ना, सुबुद्धि राय के उस लीला में किस तरह से वो जो निजाम रहता है वो बोलता है कि उनकी पत्नी पूछती है आपके पीठ के ऊपर ये क्या है, वो बोलते नहीं एक बार मेरे जो मालिक थे उसने बहुत मारा था, तो बोलते ऐसा कैसा, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, बदला लेना पड़ेगा, बस हो गया। तो अभी तक वो निज़ाम सब भूल चुका था, लेकिन पत्नी ने बोल दिया तो उन्होंने वो बोलते सुबुद्धि राय को क्या करना है, मुसलमान बनाना है बोलते। या फिर यहाँ पे पुणे में भी ऐसा हुआ था कि यहाँ पे काका माला वाचवा मतलब एक पेशवे थे, उनकी पत्नी ने क्या किया था, उन्होंने बोला था कि इसको मरना चाहिए, बस मारना है। और उन्होंने क्या किया था, एक अपने ही जो अभी मराठी में तो उसको मतलब उनका रिलेशन ऐसा था कि वो काका और भाचा मतलब उसके जैसा वो रिलेशन है, तो अपने ही वो छोटे से बच्चे को मतलब मार डाला था और वो इधर ही हुआ था। तो हम देखते हैं कि ये सामान्य है कि बड़े बड़े राजा आके जाते हैं, या फिर अभी हम राजाओं का उदाहरण ले रहे हैं क्योंकि वो क्या रहते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। लेकिन भौतिकवादी चेतना में क्या हो जाते हैं, वो नियंत्रित हो जाते हैं। लेकिन ये श्रीमद् भागवतम भी क्या करते हैं, बार बार वही बताते हैं, बहुत सारे जो राजा हैं वो बताते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में चतुर्थ स्कंद में जो 25वां अध्याय है उसमें पुरंजन का उपाख्यान है, तो वहाँ पे उधर लिखा है कि किस तरह से राजा पुरंजन भी क्या बना था, अपने जो पत्नी थे उसके हाथ के क्या बन चुके थे, क्रीड़ा मुर्ग बने थे। अभी ये यहाँ पे शब्द है विनोद मुर्ग, उसी तरह से क्रीड़ा मुर्ग ये शब्द भी बहुत बार 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 रिपीट होते हैं। क्रीड़ा मुर्ग मतलब हाथ का खिलौना, लेकिन खिलौना तक क्या हो जाता है, निर्जीव रहता है, लेकिन ये क्या सजीव है, इसी के लिए इसको बोला है कि मतलब एक मराठी में बोलते पाड़ी प्राणी मतलब ऐसा जानवर की जो क्या है, पालतू जानवर उस तरह से। लेकिन ये सामान्य व्यक्ति नहीं, ये बड़े बड़े राजा है, तो ये बड़े बड़े राजा ऐसी हालत है तो क्या होता है। तो यहाँ पे भी जो अजामिल है, वो अजामिल भी बोलते हैं जो विष्णुदूत को, कि छठे स्कंद में श्रीमद् भागवतम के दूसरे अध्याय में बोलते हैं विमुच्य तमिम बंधम अविद्या काम कर्मजम सर्वभूतम सुरुच्छान्तो मैत्र करुण आत्मवान मोचये ग्रस्तमानानम योशिन मयात्माया विक्रीडितो ययम क्रीड़ा मृग इवाधमः। वो बोलते हैं कि मैं इस तरह से मतलब जो भक्तों का संग छोड़कर या फिर ऐसे भगवान का संग छोड़कर अविद्या काम कर्मजम इसमें लग चुका हूँ, लेकिन जो मैं क्या बन चुका हूँ, बोलते विक्रीडितो मतलब मैं क्या बन चुका हूँ, ग्रस्तमानायाम योशिन मतलब मैं स्त्री के द्वारा क्या बन चुका हूँ, एक ग्रस्त बन चुका हूँ और उसमें एक क्रीड़ा मृग बन चुका हूँ। तो हरे कृष्ण प्रभु जी से। तो ये प्रहलाद अजामिल बोलते हैं, उसी तरह से प्रहलाद महाराज भी अपने असुर पुत्रों असुर मित्रों को बोलते हैं कि किस तरह से व्यक्ति क्या करता है, काम दृशा विहार क्रीड़ा मृग मतलब किस तरह से जो व्यक्ति है वो क्या बन जाता है कि काम के द्वारा बाधित होकर एक क्रीड़ा मृग बन जाता है। और सबसे विशेष एक श्लोक आ जाता है दशम स्कंद में इस 51वें अध्याय में, उसमें मुचकुंद महाराज बोलते हैं, तो मुचकुंद बोलते हैं कि मैं कौन था, एक समय पे चतुरंगिनी सेना लेकर घूमता था, ऐसे सब सेना लेकर घूमने वाला ऐसा मैं व्यक्ति हूँ। लेकिन वो बोलते हैं कि इस तरह से एक राजा पूरे सारे दुनिया को जीत लेगा, सारे दिशाओं को जीत लेगा, लेकिन वो क्या करता है, जैसे ही अंतपुर में प्रवेश करता है और वो क्या होता है, एक स्त्रियों के द्वारा क्या हो जाता है, क्रीड़ा मुर्ग बन जाता है, उनके द्वारा नाचा जाता है ना। तो उसी तरह से 11वें स्कंद में भी 26वें अध्याय में बोलते हैं पुरुरवा बोलते हैं, उस चैप्टर का नाम है ऐलगीत। ऐल मतलब इला के जो पुत्र है, इला और बुध उनके जो पुत्र है पुरुरवा, तो अपने अनुभव बता रहे, बोले उर्वशी के चक्कर में मेरा क्या हो गया था। वो बोलते हैं अहो मे आत्मसम्मोहो येनात्मा योषिताम कृतः क्रीड़ा मृगम चक्रवर्ती नरदेव शिखामणि, मतलब मैं क्या बन चुका था, मैं चक्रवर्ती नरदेव शिखामणि था, लेकिन देखो अहो मे आत्मसम्मोहो मैं क्या बन चुका हूँ, योषिता कृतः क्रीड़ा मृग, मतलब मैं स्त्रियों के द्वारा नियंत्रित कर किया जाने वाला एक क्रीड़ा मृग बन चुका हूँ। तो ये है मॉडर्न सिविलाइजेशन। इस जो हम जीवन शैली में देखते हैं किस तरह से व्यक्ति क्या कर रहे हैं, भगवान से दूर जाने का प्रयास होता है उसका, क्योंकि उनका समस्या क्या है, जैसे श्रीमद् भागवत में बता गए 7वें स्कंद में 5वें अध्याय में नते विदु स्वार्थ गतिम विष्णु दुराशया ही बहिरर्थ मानिना अंधा यथा अंध उपमानसा त्यापिश तंत्र्याम उरुदामनी बद्ध श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे वही हम देखते हैं कि अंधा यथा अंधर उपमानसा मतलब क्या कर रहे हैं कि इस भौतिक दुनिया में, जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि व्यक्ति क्या कर रहे हैं, इस आधुनिक सभ्यता कैसे कि बड़े बड़े पुल सड़कें बना मशीनें बना सकते हैं और इस तरह से जीवन जीना ही क्या है जीवन का यही स्वार्थ है। अगर ये कोई नहीं कर पा रहा है तो व्यक्ति क्या बोलते हैं कि हमने जीवन में कुछ प्राप्ति नहीं किया है ना। जिस तरह से देखते हैं कि अभी लोग क्या कर रहे हैं कि बोल रहे अभी प्रोडक्टिविटी लोगों का कम हो रहा है, लोग क्या नहीं कर रहे, वे ज़्यादा से प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, ये कर रहे हैं, तो ये क्या है भौतिक चेतना हो जाते हैं। लेकिन ये भौतिक सभ्यता प्रभुपाद बोलते हैं कि कितना भी करने दो वो अधम तथा निंदनीय है। इसी के लिए ये जो ये है आधुनिक सभ्यता, इसको ये आसुरिक सभ्यता जैसे है, और इस आसुरिक सभ्यता में जो भगवद गीता बोलते हैं बार बार है ना कि आसुरिक सभ्यता में व्यक्ति क्या करता है भौतिकवादी प्रगति में लग जाता है। लेकिन इस भौतिक प्रगति के कारण क्या हालत होता है देखिए, जैसे भगवद्गीता अध्याय 16 में श्लोक क्रमांक 11 और 12 बोलते हैं, चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रितः काम उपभोग परमा एतावत इति निश्चितः आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। तो बोलते हैं कि ये भौतिकवादी लोगों का विश्वास रहता है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता का मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है, वे लाखों इच्छाओं के आशा पाश शतैर बद्धा में जाल व बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। और इस तरह से मतलब वो बोलते कि ये ऐसे ही जीना चाहिए। लेकिन ये समस्या इस तरह से, इस भौतिक दुनिया में कोई व्यक्ति रहेगा तो राजा ऋषभदेव जैसे बोलते हैं कि पुंसम स्त्रिया मिथुनि भावमितम ततोर मितो हृदयम ग्रंथम आयु अहो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोहयम अहम ममेति। समस्या क्या है, इस भौतिक दुनिया में रहेंगे तो हृदय ग्रंथि जो एक्चुअली हम बाहर की गांठ तो छुड़ा सकते हैं लेकिन हृदय की ग्रंथि कैसे छुड़ाएंगे, तो हृदय की इस ग्रंथि बढ़ जाती है क्योंकि अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोहयम अहम ममेति। मतलब बार बार व्यक्ति क्या बोलता है ये मेरा है और ये सब मैं ही कर रहा हूँ। इसी के लिए उसी भगवद्गीता के उसी अध्याय में अगले बार में मतलब भगवान बताते हैं कि किस तरह से लोगों का विश्वास रहता है कि इदम अद्यम मया लब्धम इमं प्राप्स्य मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम असो मया हत शत्रुर्हनिश्चय चापरानपि ईश्वरोऽहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी आढ्य बीजनवान अस्मि कोऽन्यस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदीश्व इति अज्ञान विमोहितः। तो यही समस्या होता है कि ये व्यक्ति सोचता रहता है आसुरी व्यक्ति कि आज मेरे पास इतना धन है, इतनी योजना से मैं और अधिक धन कमाऊंगा, इस समय मेरे पास इतना है लेकिन भविष्य में और बढ़कर और अधिक हो जाएगा, वो मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया है, मेरे और शत्रु मार दिए जाएंगे, मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, ईश्वरों भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास कुलीन संबंध है, मैं सर्वशक्तिमान सुखी लेकिन मेरे समान कोई शक्तिमान तथा सुखी नहीं, मैं यज्ञ करूंगा दान दूंगा इस तरह आनंद मनाऊंगा। लेकिन इस प्रकार ऐसे व्यक्ति भगवान बोलते अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो बहुत ही समस्याएं इस दुनिया में रहना ही पड़ता है भौतिक दुनिया में। तो भक्तों के प्रश्न आ जाएगा कि किस तरह से भगवान की भक्ति में तो लगे हैं लेकिन अभी इस भौतिक दुनिया में भी रहना पड़ेगा, इस भौतिक दुनिया के साथ संबंध भी है। तो इसमें फिर प्रोपा जी बहुत सुंदरता से लिखते हैं कि हाँ महाराज प्रिय व्रत भर्सना कर रहे थे, भर्सना जरूरी है लेकिन भर्सना करने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन में कार्य किया था। वो क्या किया था, उन्होंने महामुनि नारद मुनि की सेवा की थी है ना, जैसे भगवद गीता में बोला है अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 34 में तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तो ऐसे नारद मुनि की सेवा करने की वजह से उनको क्या प्राप्त हुआ था, जो ज्ञान प्राप्त हुआ था जिसके द्वारा वो क्या कर सकते थे, मतलब वापस भक्ति में पूरा दृढ़ता से लग सकते थे। क्योंकि भक्तों के आशीर्वाद या फिर जो शुद्ध भक्त है या फिर जो महात्मा है उनके आशीर्वाद से क्या हो सकता है, कोई वापस भक्ति में आ सकता है। नहीं तो ये भौतिक ऐश्वर्य इतना क्या है शक्तिशाली है कि व्यक्ति कर्म से विचलित हो जाएगा, मतलब कौन से भक्तिमय कर्म से, क्यों, क्योंकि उन्होंने नारद मुनि की सेवा की थी। जैसे श्रीमद् भागवतम में वही जो ये बोलते हैं राजा ऋषभदेव बोलते हैं, महत् सेवा द्वारम अहुर विमुक्ते स्तमोद्वारम योषिता संगी संगा महातंते समचित्ता प्रशांता विमन्येव श्रुत साधवोये। तो महत् सेवा द्वारम अहुर विमुक्ते, तो एक तो है, दो तरह के द्वार यहाँ पे बोला गया है, एक है महत् सेवा द्वारम और दूसरा है तमो द्वारम योषिता संगी संगम। तो पहले हम जो सुनेंगे तो है कि किस तरह से जो इस भौतिक चेतना में लगते हैं और स्त्रियों और उनके द्वारा जो क्रीड़ामुख बन जाते हैं संगी संगम, उनका संग करते तो वो क्या हो जाए तमो द्वारम, तो क्या हो जाए तमो द्वार खुल जाते हैं। लेकिन इस में हमारे लिए एक सबसे महान सौभाग्य है कि अगर हमें महत् सेवा द्वारम, अगर हमें महत् सेवा मिल जाए, शुद्ध भक्तों की सेवा मिल जाए, शुद्ध भक्तों को हम उनका कृपा आशीर्वाद मिल जाए, तो क्या बन जाता है वो भगवत धाम का दरवाज़ा खुल जाता है। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जिस तरह से जो ये थे नारद पुत्र थे, जब बचपन में उन्होंने किन की सेवा की थी, भक्ति वेदांत उनकी सेवा की थी, वो बोलते कि मैं जन्म से बहुत ही क्या था, बहुत ही निचले जन्म से था, लेकिन फिर भी इनकी कृपा से मैं क्या बन चुका था, भगवान की जो कृपा आशीर्वाद है प्राप्त कर चुका था। तो ये भगवान की भक्ति में लग जाते तो समस्या आती रहती है कभी कभी। यही समस्या बोलते हैं कौन, बोलते हैं अर्जुन बोलते हैं। वो अर्जुन बोलते हैं जो अध्याय छठे में श्लोक क्रमांक 37 में बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं अयति श्रद्धयोपे तो योगा चलति मानस अप्राप्य योग सब सतिम का गतिम कृष्ण गच्छति। कि किस तरह से कि उस असफल योगी का क्या गति है जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। क्योंकि वो क्या विभ्रष्ट हो जाता है, क्या छिन्न भिन्न हो सकता है क्या, या फिर वो बोल रहे अर्जुन कि ये संशय है अर्जुन, सॉरी कृष्ण, छेत्तुम क्या करो उसको, अरहसी अशेषता उसको आप नष्ट कर दो। तो वहाँ पे भगवान कृष्ण बोलते हैं, बहुत सुंदर है, पार्थ नैवे नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गश्यति। भगवान बोलते हे पृथापुत्र, ये जो रास्ता है, ये जो भक्तिमय कार्य है, ये क्या है, कल्याण कृत कश्चित दुर्गति, मतलब उसका कुछ नहीं, उसका दुर्गति नहीं होने वाला है, ना कि उसका विनाश होने वाला है वो कभी। तो इस तरह से भगवान किस तरह, भगवान भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि जो भक्ति में लगे रहेंगे तो किस तरह से, नेहा अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे कि कृष्ण भावना व्रत के लिए जो भी कुछ साधन किया जाता है उसका ना तो कभी नाश होता है ना, ना कोई रहस्य। और यहाँ पे कोई भी जो सेवा किया जाता है वो बड़े से बड़े संकट से बचाने के लिए क्या है, पर्याप्त है। तो यहाँ प्रियव्रत महाराज लेकिन क्या किया था, उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पे प्रभुपाद बताते कि उन्होंने क्या किया था कि नारद मुनि से क्या किया था, ट्रेनिंग लिया था, मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। तो ये मार्गदर्शन प्राप्त होने के कारण उनको ज्ञान प्राप्त हो रहा था, लेकिन इस भौतिकवादी चेतना में ज्ञान प्राप्त होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि भगवद गीता में बोलते हैं इस अध्याय 15 में श्लोक क्रमांक 10 में, उत्क्राम अनंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गृणानुतम विमूढ़ा विमूढ़ानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। तो बोलते हैं जो मूर्ख लोग हैं समझ नहीं सकते कि किस तरह से ये शरीर धारण कर रहे हैं या फिर किस तरह से भोग करना चाहिए, लेकिन ये कौन देख सकता है, ज्ञान चक्षुषा, ये ज्ञान चक्षु जिसको प्राप्त है। और ये ज्ञान चक्षु कैसे प्राप्त होते हैं, वही जो देखा था, तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदक्षिंति ते ज्ञान ज्ञानी न तत्व दर्शन, वो तत्व का दर्शन दिखाते हैं। और ये सिर्फ होता है बस शुद्ध भक्तों की कृपा से और भक्ति करने से। इसी के लिए भगवद गीता में बोलते हैं अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 26 में, माम चौविचारे न भक्ति योगी ने सेवते सगुणान समति एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तभी व्यक्ति क्या कर सकता है, इस भौतिक दुनिया में तीन गुणों से बाधित होने के बाद भी लेकिन क्या कर सकता है, इससे परे जा सकता है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, माम चो अभिव्यभिचारे न अव्यभिचार मतलब अहेतु की अप्रतिहता, इस तरह से भक्ति योगे न सेवते, भक्ति योग में लगे रहते हैं, तभी व्यक्ति क्या कर सकता है, भगवान की प्राप्त कर सकता है। तो ये जो हम इस श्लोक में पढ़ रहे कि किस तरह से जो ये थे महाराज प्रियव्रत थे, उन्होंने अपने कृष्ण भावनावृत को पुनर्जीवित किया था। ये इसी के लिए हुआ कि उन्होंने अपने जो गुरु है और जो अपने वरिष्ठ है उनको क्या किया था, आनंदित किया था। तो इसी तरह से इस दुनिया में भी क्या आ जाते हैं, भक्ति करते वक्त भी कभी कभी साधक को भी जीवन में क्या हो जाते हैं, समस्या आ जाती है। लेकिन उस वक्त उस हमें देखना चाहिए कि हमें क्या मिल चुका है, किस तरह से हमारी जो चेतना है वो भौतिकवादी चेतना से आध्यात्मिक चेतना की तरफ लेके जाना है। अभी ये जो क्रीड़ा मुरुक के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो वहाँ पे और एक श्लोक आता है कि भगवद गीता में तीसरे स्कंद में तीसरे अध्याय में आता है कि जैसे भगवान ने वृंदावन के बाहर लीलाएं की थी, तो उसमें बोलते हैं प्रियम प्रभुर ग्राम में इव प्रियाया विदित सुरागच्छ द्वितरुम यदर्थे वज्रयावद दत्तम सगनो सुरुषांध क्रीड़ा मृगो नूनमयम वधूनाम। मतलब उन्होंने अपनी जो भार्या है जो सत्यभामा, उनको आनंदित करने के लिए क्या किया था, एक पारिजातक वृक्ष को लेकर आ रहे थे। लेकिन उसी वक्त भगवान को तो बोला है कि वो अपने भार्या को प्रिय मतलब उनको प्रसन्न करने हेतु, लेकिन उधर और एक दूसरे व्यक्ति थे, वो थे देवताओं के राजा, वो थे इंद्र, लेकिन वो क्या बन चुके थे, क्रीड़ा मुर्ग। तो उनकी पत्नी ने बोला रहे देखिए ये लेके जा रहे, तो इस तरह से तो युद्ध हो गया था। तो कैसे एक भौतिकवादी चेतना और एक आध्यात्मिक चेतना, मतलब दोनों चीज़ें दिखती एक जैसा कि ये कैसे है, भगवान भी अपनी पत्नी को प्रसन्न करना चाहते लेकिन वो क्रीड़ा मुर्ग नहीं है, वहाँ भी बोला गया तात्पर्य में, लेकिन जो इंद्र है वो क्या बन चुके, लेकिन क्रीड़ा मुर्ग बन चुके। तो ये भौतिकवादी चेतना, डेफिनेटली इंद्र भी मिश्र भक्त है, वो भी भक्ति भक्त है, वो जब यज्ञ करते तो भगवान स्वयं आते, वो भी महान भक्त है। लेकिन हम देख सकते हैं कि इस भौतिक दुनिया में जो हमारा जो कार्यकलाप है वो क्रीड़ा मुर्ग जैसा हो जाता है, लेकिन भगवान का कार्य हमेशा ही कैसे रहेगा, मतलब अपने भक्तों को प्रसन्न करने हेतु। अभी वही शब्द उपयोग में लाया जाता है भगवान को भी गुणगान करने के लिए, जैसे बहुत ही सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, जब 11वां स्कंद में 5वें अध्याय में आता है 34वां श्लोक, बहुत ही सुंदर और आश्चर्यकारक श्लोक है। जब नारद मुनि बता रहे वसुदेव महाराज को, मतलब किस तरह से ये जो ज्ञान दे रहे थे, वो बता रहे त्यक्त्वा सुदुस्त सुदुस्त सुरप्सित राजलक्ष्मी धर्मिष्ट आर्य वचसा यद अगाध अरण्यम माया मृगम दैत अप्सि अन्मधावत वंदे महापुरुषम ते चरणार विंदम। तो ये इतना सुंदर श्लोक है कि ये श्लोक इसके बारे में बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु के बारे में है, कृष्ण के बारे में है और रामचंद्र भगवान जी के बारे में। तो ये बोलते त्यक्त्वा सुरक्षितम राज्य लक्ष्मी, मतलब उन्होंने अपने सबसे हृदय से पास में ऐसे लक्ष्मी जी को भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि धर्मिष्ठ, क्योंकि धर्मिष्ठ है, लेकिन आर्य वचसा एक ब्राह्मण के शाप के कारण यद जगात अरण्यम, वो अरण्य में चले गए, मतलब उन्होंने यहाँ पे चले गए थे, संन्यास लिया था। माया मृगम माया और किनके पीछे भाग रहे, माया मृगम दैत्यपसितम अन्व धावत, मतलब वो इनके पीछे अन्व धावत भाग रहे, किनके पीछे, जो माया मृग के पीछे भाग रहे, मतलब इस भौतिक दुनिया में जो भौतिक लोग है जो माया मृग के पीछे भाग रहे उनके पीछे कौन भाग रहे, ये चैतन्य महापुरुष भाग रहे। और अवंदे महापुरुषम चरणारविंद, तो उसी तात्पर्य में बहुत सुंदरता से लिखा है कि किस तरह से, लेकिन कृष्ण भी एक तरह से वो मायामृग, मतलब वो योग माया, मतलब ऐसा बन जाते जैसे श्रीमती राधा रानी के द्वारा वो भी नियंत्रित हो जाते। तो ये बहुत ही आध्यात्मिक चेतना है, मतलब किस तरह से भगवान भी ये मतलब बहुत सुंदरता से अपने दिखाते कि मैं आई एम जस्ट कंट्रोल्ड बाई डिवोटीज, मतलब भक्तों के द्वारा नियंत्रित होता हूँ। और वहाँ पे बोला है कि जो कृष्ण है वो भी श्रीमती राधा रानी के उनके इशारों पे नाचते, और भगवान रामचंद्र भी, उन्होंने भी क्या किया था, अपनी जो पत्नी भार्या है उनको भी आनंदित करने के लिए क्या, किनके पीछे भागे थे, वो माया मृग के पीछे भागे थे। लेकिन हम जब ये सुनते हैं भगवान की जो गुणगान है या फिर भगवान के जो इतना सारा वर्णन है, ये क्या करता है, हमारे इस भौतिक चेतना से हमें दूर लेके जाता है। और यही होता है जो एक्चुअली आज के दिन में, जैसे आज पता नहीं वो आज दिन मतलब शेड्यूल के अनुसार तो बोला गया था कि हेरा पंचमी है, तो हेरा पंचमी नाम का एक बहुत ही सुंदर ऐसा एक गुणगान होता है भगवान का। और इसमें जो भगवान किस तरह से एक मतलब नियंत्रित होते हैं भक्तों के द्वारा या फिर अपने पत्नी के द्वारा, वो भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे मिलते हैं प्रियव्रत महाराज किस तरह से बोलते कि मैं उसके इशारों पे नाच रहा हूँ, लेकिन जो ये है स्वयं भगवान जगन्नाथ है ना, वो कहाँ पे आते हैं, नीलाचल से निकल कर कहाँ पे आ रहे हैं अभी, सुंदराचल आ जाते हैं। सुंदराचल मतलब जो गुंडीचा वृंदावन आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो रथ यात्रा के उसके दिन के बाद पांचवें दिन में हेरा पंचमी आता है। तो यहाँ पे ये जानकर कि बोले हेरा पंचमी र दिन आईला जानिया काशी मिश्र कहे राजा सयत्न करिया। यह जानकर कि हेरा पंचमी उत्सव आने वाला है, राजा प्रताप रुद्र ने काशी मिश्र से बड़ी सावधानी से बात किया और बोलते कल हेरा पंचमी हबे लक्ष्मी र विजय ऐसे उत्सव कर ए न प्रभु नाई हय। तो बोल रहे कल हेरा पंचमी या लक्ष्मी विजय उत्सव होगा, तुम इस उत्सव को इस तरह से मनाओ कि जैसा कि इसी पूर्वी कभी न मनाया गया हो। तो यहाँ पे जो प्रताप रुद्र राजा है वो किस तरह से प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं जो चैतन्य महाप्रभु। उसे कुछ दिन पहले वो जो जो उद्यान था उसमें वो गोपी गीत सुनाकर चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करते, लेकिन आगे वाले इस दिन में जब चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए बोल रहे कि हेरा पंचमी को क्या करना है, बहुत अच्छे से मनाना है। तो यहाँ पे तात्पर्य प्रभात बोलते हैं हेरा पंचमी का उत्सव रथ यात्रा के पाँच दिन पड़ता है। भगवान जगन्नाथ अपनी पत्नी लक्ष्मी को छोड़कर वृंदावन अर्थात गुंडीचा मंदिर चले जाते हैं। भगवान से विरह के कारण लक्ष्मी निश्चय करती है कि भगवान का दर्शन करके करने गुंडीचा मंदिर जाएगी। अतः गुंडीचा मंदिर में लक्ष्मी जी के आगमन को हेरा पंचमी के रूप में मनाया जाता है। कभी कभी अतिवाड़ी संप्रदाय लोग हेरा पंचमी का नाम बिगाड़कर उसे हरा पंचमी कहते हैं। हेरा शब्द का अर्थ है देखना और यह सूचक है कि लक्ष्मी जी द्वारा जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाने का। पंचमी शब्द का अर्थ है पांचवा दिन और इसका उपयोग इसके लिए किया जाता है क्योंकि यह चंद्र के पांचवें दिन मनाया जाता है। तो वहाँ पे फिर आगे राजा प्रताप रुद्र बोलते हैं कि किस तरह से उसको मनाना है और किस तरह से उसको अच्छे से हम चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये हेरा पंचमी में वो बोलते कि बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था की करने आ जाए कि जो चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रसादम की व्यवस्था भी बहुत बड़े पैमाने पे किया जाए। तो यहाँ पे लिखा है नीला चले आईला पुन भक्त सहन संगे देखी ते उत्कंठा हेरा पंचमी रंगे। तो तब से चैतन्य महाप्रभु तथा उनके निजी संगी हेरा पंचमी उत्सव देखने के लिए बड़ी उत्सुकता के साथ नीलाचल लौट आए। तो वहाँ पे वो स्वरूप दामोदर के साथ हेरा पंचमी का बहुत सुंदरता से वो दर्शन कर रहे थे। अभी यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, पूछते हैं स्वरूप दामोदर जी को कि बोलते हैं यद्यपि जगन्नाथ करे न द्वारकाय विहार सहज प्रकट करे परम उदार तथापि वत्सर मध्य हय एक बार वृंदावन देखी रे तार उत्कंठ अपार। यद्यपि भगवान जगन्नाथ भगवान अब द्वारका धाम में अपनी लीलाएं करते हैं, वह अपनी परम उदारता प्रकट करते हैं, फिर भी वर्ष में एक बार वो वृंदावन देखने के लिए अत्यधिक उत्कंठित हो जाते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले हम क्लास सुन रहे थे तो वहाँ पे अनंग मोहन प्रभु बता रहे थे किस तरह से कि अगर भगवान श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी का पूरे दर्शन एक दिन में करेगा और ऐसे व्यक्ति 10 साल तक करेगा तो उतना दर्शन 10 साल करने का और गुंडीचा मंदिर में जाकर जगन्नाथ जी का एक बार दर्शन करने का उसका महत्व सेम है। तो मैं जो सुना तो मैं बोला हरी बोल किस तरह से, क्योंकि हमारे इधर हमारे जगन्नाथ जी राधा वृंदावन चंद्र के साथ ही तो बहुत ही सुंदर बात है कि हमें ये और अभी नीलमाधव भी आ चुके तो बहुत ही ऐसे। तो यहाँ पे ऐसे जगन्नाथ जी बहुत ही प्रसन्न हो जाते जैसे ही वृंदावन में आ जाते। और तो यहाँ पे प्रश्न बोलते हैं मतलब ये चैतन्य महाप्रभु नाना पुष्पोद्याने तथा खेले रात्रि दिने लक्ष्मी देवी र संगे नाई लय की कारिने। भगवान रात दिन फूलों के विभिन्न बगीचों में लीलाओं का आनंद लेते हैं कि लेकिन वे अपने साथ लक्ष्मी देव को क्यों नहीं लेके जाते। तो वैसे ही वो जैसे साउथ इंडिया यात्रा में भी पूछते हैं ना कि इस तरह से कि आपके लक्ष्मी देवी रासलीला में क्यों प्रवेश नहीं कर पा रहे। उस तरह से वापस चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे किस तरह से ऐश्वर्य और माधुरी लीला। तो तो यहाँ पे स्वरूप दामोदर बोलते हैं, स्वरूप कहे शुन प्रभु कारण यहार वृंदावन क्रीड़ाते लक्ष्मी नाही अधिकार। स्वरूप दामोदर ने कहा, प्रभु कृपया इसका कारण सुने, लक्ष्मी देवी को वृंदावन लीलों में प्रवेश नहीं कराया जाता, क्योंकि क्या बोलते, वृंदावन लीलाए कृष्ण र सहाय गोपीगण, गोपीगण बिना कृष्ण र हरिते नाने नारे मन। वृंदावन लीलाओं में एकमात्र सहायिका गोपी है, गोपियों के व्यतिरिक्त अन्य कोई कृष्ण का मन आकृष्ट नहीं कर सकता। तो वहाँ पे महाप्रभु जी बोलते हैं, लेकिन कृष्ण तो वहाँ रथ यात्रा के बहाने बलदेव सुभद्रा को लेकर जा रहे, तो फिर लक्ष्मी जी को क्यों नहीं लेकर जा रहे, और लक्ष्मी जी क्यों इतने अभी गुस्सा हो रहे, क्योंकि हेरा पंचमी अगर ये थोड़ा सा हम देखेंगे तो वहाँ पे लक्ष्मी जी गुस्सा होकर आ जाते हो, किस तरह से हम थोड़ा आगे देखने वाले कि फिर वो बोलते अतएव कृष्णेर प्राकट्य नाही किछु दोष, तबे केन लक्ष्मी देवी करे ये तरोष। कृष्ण की लीलाओं में तो कोई दोष नहीं, फिर भी लक्ष्मी जी क्यों रुष्ट होती है? तो बोलते हैं स्वरूप कहे प्रेमवतीर यही ये तो स्वभाव, कांतेर औदास्य लेशे हय क्रोध भाव। स्वरूप दामोदर ने बोला कि जो प्रभु ने प्रेम से जो बाधित युवती का स्वभाव है कि वह अपने प्रेमी के उपेक्षित होने पर तुरंत क्रुद्ध हो जाती। तो यहाँ पे फिर स्वरूप दामोदर और चैतन्य महाप्रभु देख रहे कि ऐसे जब बात कर रहे थे तो वहाँ पे वो लक्ष्मी जी आती है पूरा वो पालखी में वगैरह आकर, और वहाँ पे जो श्रीमती लक्ष्मी देवी के उनके जो सहायक है, उनके जो संगीगण है, वो पंडा आ जाते और वो किस तरह से पूरा सजधज के आइए लक्ष्मी जी। और यहाँ बोल रहे कि छत्र चामर ध्वजा पताकार गण, नाना वाद्य आगे नाचे देवदासी गण। पालकी के चारों ओर लोग छत्र चामर तथा झंडे झड़ियाँ लिए हुए थे, और इनके आगे आगे गवे तथा नर्तियाँ की थी। और ये दासियों में के पास क्या थे, जल के घड़े थे, चामर तथा पान की मतलब क्या थे तांबूल वगैरह सब लेकर आए हैं, बहुमूल्य हार पहने हुए उन्होंने सभी ने। लेकिन अलौकिक ऐश्वर्य संगे बहु परिवार क्रुद्ध है लक्ष्मी देवी आइल सिंह द्वार। तो लक्ष्मी जी क्रुद्ध मुद्रा में मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच आ चुकी, उन्होंने उनके साथ पूरे परिवार के अनेक सदस्य थे और असाधारण ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर रहे थे। और बोल रहे कि ये जब जगन्नाथ जी के पास तक आ गए, उन्होंने क्या किया, जगन्नाथ जी के जो मुख्य सेवक थे उनको क्या कर दिया, बंदी बना दिया। वो बोलते लक्ष्मी देवी दासे कर गण करे न बंध, मतलब बंधने, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने लक्ष्मी देवी के जो दास, उन्होंने जो दासीगण थे, उन्होंने जो जगन्नाथ जी के जो प्रधान सेवक थे उनको बंदी बनाया। और बोलते बांधिया आनिया पाड़े लक्ष्मी र चरने, चौरे ग्रे न दंड करी लये नाना धने। दासियों ने जगन्नाथ जी के सेवकों को बांध कर तथा उनके हथकड़ियाँ लगा दी और उन्हें लाकर लक्ष्मी जी के चरण कमरों पर बिखरने के लिए बाध्य किया। वे सभी धन लूटने वाले चोरों की तरह बंदी बनाए गए थे। तात्पर्य, जब भगवान जगन्नाथ अपनी रथ यात्रा प्रारंभ करते तब वे लक्ष्मी जी को आश्वासन देते कि अगले दिन लौट आएंगे, किंतु जब वे नहीं लौटते तो लक्ष्मी जी दो तीन दिन प्रतीक्षा करने के बाद ऐसा अनुभव करने लगती है कि उनके पति उनकी उपेक्षा की है, अतः वे स्वाभाविक रूप से काफ़ी क्रुद्ध होती है। वह स्वयं तथा उनकी सखियाँ खूब सज धज कर मंदिर से बाहर आती है और मुख्य द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। तब उनकी सखियाँ जगन्नाथ जी के सारे प्रधान सेवकों को बंदी बना लेती है और उन्हें जबरन लक्ष्मी जी के चरण कमरों के समक्ष नतमस्तक कराती है। तो यहाँ पे फिर वो बहुत सुंदर ऐसा है कि इस दिन क्या होता है कि सारे जो पूरा डांटते हैं बहुत, और यहाँ पे मैं एक सुन रहा था कि जो भक्त है जिन्होंने हेरा पंचमी का जो व्रत मतलब देखा है उन्होंने, विशेष करके जो उड़िया भक्त है उड़ीसा से, तो बोलते हैं कि बहुत एकदम ऐसे गालियाँ देते हैं। और यहाँ पे भी बोलते हैं कि इस तरह से कि वो बोले ऐसी गालियाँ आपने सुनी भी नहीं होंगी, ऐसे गालियाँ देते ये सच में होता है ऐसे हेरा पंचमी दिन। लेकिन बहुत विशेष है कि ये जब चल रहा है तो क्या होता है, लक्ष्मी संगे दासी गणेर प्रागल्भ देखिया, हसे महाप्रभुर गण मुखे हस्त दिया। तो चैतन्य महाप्रभु मुख पर हाथ लग कर क्या करे थे, हंस रहे थे और बहुत मतलब क्या चल रहे हैं। और फिर स्वरूप दामोदर ने कहा, दामोदर कहे ऐछे मानेर प्रकार त्रिजगते नाही कहा नाही देखी शून्यार। स्वरूप दामोदर ने कहा तीनों लोकों में इस तरह का अहंकार नहीं है, कम से कम मैंने न तो देखा है न सुना है। तो फिर वो बहुत सुंदरता से स्वरूप दामोदर बताते हैं चैतन्य महाप्रभु किस तरह से एक स्त्री मान करती है, लेकिन ये आध्यात्मिक रूप से बता रहे। और वो बोलते हैं कि सत्य भामा में भी ऐसा मान करती है, वो भी ये होती है, लेकिन आज हम देख रहे हैं किस तरह से लक्ष्मी जी मतलब रुक्मिणी देवी वो भी गुस्सा कर रही है। हम देखते हैं कि जैसे शिशुपाल के जो एक इसमें बोलते हैं, जैसे भगवान बोलते हैं कि अरे मुझसे विवाह हो गया, शिशुपाल से विवाह हो जाता तो अच्छा हो रहता, इस तरह से किस तरह से वो भगवान बताते। तो वो रुक्मिणी है, रुक्मिणी देवी है, वो क्या करती है, वो कुछ भी नहीं बोलती वहाँ पे, मतलब वहाँ हुई मतलब मूर्छित होकर गिर जाती है कि भगवान बोलते इससे अच्छा जाओ अभी भी सोच सकते अगर कोई दूसरा अच्छा पति मिल जाए तो, ऐसा बोलते। तो रुक्मिणी जी वहाँ पे गुस्सा नहीं होती, क्रोधित नहीं होती, लेकिन वही लक्ष्मी जी अभी गुस्सा हो रही है। किस तरह से मतलब ये जो भावना है किस तरह से, देखिए ये है आध्यात्मिक भावना। आध्यात्मिक भावना से व्यक्ति का जो काम वासना बढ़ता नहीं, उल्टा तो उसका क्या होता है, भगवान के और भी पास में जाता है। जैसे भगवान की सारी लीलाएँ जैसे रासलीला वगैरह, वो तो शुद्ध भक्त जैसे चर्चा करते तो क्या है वो उनको और भी आनंद प्रदान करने वाला और मतलब पूरे इस तरह से। लेकिन फिर भी हम भी जब ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुन रहे हैं, यहाँ पे लक्ष्मी जी कर रहे, तो देखने वाला लगता है कि क्या है ये मतलब। लेकिन वहाँ पे फिर श्रीवास ठाकुर आ जाते हैं। श्रीवास ठाकुर बोलते हैं, बोले ये क्या है जगन्नाथ जी, क्या किया इन्होंने, हमारे लक्ष्मी जी को छोड़कर ऐश्वर्य को छोड़कर ये वृंदावन में आए, क्या है इस वृंदावन में, फूल पत्ते और क्या झाड़वाड़ी कुछ नहीं होते। तो वहाँ पे फिर स्वरूप दामोदर फिर बोलना चालू करते, देखना है सुनिए बोलते हैं। या अगर एक्चुअली आप देख सकते चैतन्य चरितमानस मध्य लीला में है, अध्याय 14 में है, बहुत सुंदर लीला है। तो वहाँ पे स्वरूप दामोदर बोलते, अभी तक अपने भावों के बारे में सुना था, अभी वृंदावन के बारे में सुनिए। तो वृंदावन का इतना महान लीला के बारे में वर्णन करते, कैसे वृंदावन है कि आप उसको समझ नहीं सकते हो, और इतना सारा बोलते हैं कि इसका एक इसके सामने एक बिंदु भी नहीं ये सारे आप जो बोल रहे हैं। तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु हंसते और बोलते श्रीवास ठाकुर को बोलते आप नारद मुनि के नारद मुनि ही रहेंगे, आप बदलने वाले नहीं हो, बोले लेकिन आप क्या कर रहे हो, आनंद प्रदान कर रहे हो। तो ये आनंद प्रदान कर रहे, तो चैतन्य महाप्रभु मतलब ये कैसे है ना, स्वरूप दामोदर है, श्रीवास ठाकुर है, और ये हेरा पंचमी का मतलब दर्शन कर रहे हैं। तो यही है मतलब, इसको ही बोलते हैं हमारी भौतिकवादी चेतना को आध्यात्मिक बनाना। इस जीवन में बहुत समस्या आएंगी, कष्ट हो जाएंगे, जिस तरह से लोग बोले लॉकडाउन चल रहा है, हमें तो बंद गए एक जगह पे। लेकिन मैं सोच रहा था कि ऐसे तो स्पिरिचुअल लॉकडाउन भी एक बार हुआ था, जैसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, 7 दिन का लॉकडाउन था पूरा, 7 दिन 7 रात। लेकिन भगवान ने क्या किया था, अपने अंतरंग पार्षद के साथ पूरा, उन भक्तों कब नहीं लगा था कि अरे क्या हो रहा है हम तो कुछ कार्य नहीं कर पा रहे, लेकिन उस वक्त उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी थी। जैसे गोपियां रहती थी, वो बोले रात भर भगवान को तो हम गुण देख सकते हैं लेकिन दिन में नहीं देख सकते, तो दिन में भी देखने को मिल रहा है। तो ये थे उनके माता पिता, वो बोल रहे थे अरे मतलब उनकी माँ जैसे यशोदा माँ बोल रही थी कि अरे दिन भर में उसको देख नहीं सकती हूँ, तो अभी यशोदा माँ कृष्ण को देख पा रही है। गोपगण बोल रहे थे हम दिन भर खेल सकते हैं, रात में नहीं खेल सकते। या फिर गैया भी बोल रही है कुछ समय तक कृष्ण हमारे साथ रहते। तो इस तरह से भगवान सबको आनंदित कर रहे थे। तो यहाँ पे भी सब भक्तगण इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं और उस चेतना में है, तो यही चेतना क्या कर सकता है, भौतिक चेतना से हमें दूर लेके जा सकते हैं। नहीं तो धिक धिक, यहाँ पे जो प्रियव्रत महाराज बोल रहे बार बार धिक धिक, यही धिक धिक अलम अलम ऐसा बोलती है, कौन बोलती है, सती बोलती है, जब वो देखती है कि उनके जो पति है उनका अपराध हुआ है। लेकिन ऐसा इतना अपराध होने के बाद भी लेकिन वो क्या करती है, वो बोलती है मैं वैष्णव अपराध सहन नहीं कर सकती, इसके लिए क्या करती है, आत्महत्या करती है। भौतिकवादी चेतना में जब भी धिक्कार हो जाता है या मतलब व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो व्यक्ति क्या करेगा, वो लास्ट में आजकल के जीवन में वो मतलब देखता है कि वो आत्महत्या करना चाहता है, ऐसा हो जाता है, जबकि सब होने के बाद भी। लेकिन हम ये देखते हैं कहाँ पे, श्रीमद् भागवत में, कि यहाँ पे वो धिक्कार करते लेकिन धिक्कार करके वो वहाँ पे छोड़ते नहीं, वो क्या करते, प्रयास करते। अगर थोड़ा सा विचार कर सकते हैं, अगर द्रौपदी जैसे अगर किसी के जीवन में थोड़ा सा कष्ट 1% भी आ जाए तो व्यक्ति को 100 बार वो सुसाइड करना चाहेगा फिर, है ना। लेकिन उन्होंने कभी जीवन में कभी नहीं सोचा कि मुझे जीवन का अंत करना चाहिए, उन्होंने तो भगवान को ही याद किया, भगवान को ही स्मरण किया, भगवान की लीलाओं को ही उसको ही पकड़ कर उनके नाम को स्मरण करके वो जिए, और उन्होंने उस जीवन के मतलब उन्होंने पार किया। और इसी के लिए हमारे जीवन में भी, बस थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा हूँ, एक सुंदर प्रार्थना करते ब्राह्मण, ब्राह्मण बोलते हैं जो अपने पत्नियों को देखने के बाद बोलते हैं उन्होंने अपने कृष्ण को किस तरह से आनंदित किया, वो बोलते हैं धिक जन्म न स्त्री वध यत्त धिक व्रत धिक बहुत बहुत्यताम धिक कुलम धिक क्रियाक्षम विमुखाते तो अधोक्षजय। बोलते धिक जन्म, क्या मैं हमारे जन्म का धिक्कार होने दो, अधिक बोलते कि ये तीन जो ऐसे तीन जन्म, एक तो जन्म जो शरीर का जन्म, दूसरा है जो दीक्षा, और तीसरा है क्या है जो वेदों के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसके लिए, और एक दीक्षा, इस तरह तीन जन्म हो चुके बोले। धिक व्रतम, हमने इतना सारा व्रत कर रहे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे, ये कर रहे, बहुत सारे व्रत का पालन कर रहे, कठिन तपस्या कर रहे, धिक उसका धिक्कार हो। धिक बहुत इतना बहुत सारा ज्ञान है उसका हमारे धिक्कार हो। धिक कुलम, इतना हम सुंदर कुल से लेकिन उसका धिक धिक्कार हो। धिक क्रिया दक्षम, हमने इतने सारे यज्ञ कार्य कर रहे उसका भी धिक्कार हो। विमुखाते तदोक्ष जय, अरे हम आपसे क्या हो रहे, विमुख हो रहे। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर भगवान से विमुख कर रहे तो उसका धिक्कार कर रहे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम भगवान के पास में जा रहे, भगवान के भक्तों के साथ में, कितना सुंदरता से हम चैतन्य चरितमृत में जब पढ़ रहा था तो कितना सुंदर है ना, उसमें आपको पूरा वर्णन है। भगवद्गीता के श्लोक मिलेंगे, श्रीमद् भागवतम के श्लोक मिलेंगे, उज्ज्वल नीलमणि के श्लोक मिलेंगे, मतलब पूरा सारा निचोड़ चैतन्य चरितमृत मिलेगा। और यही अगर हम करते रहते हैं और पढ़ते रहते, मतलब एक उदाहरण, मैं ऐसे नहीं, मैं गलत मत समझे, लेकिन जैसे मैं कभी मैं अपने घर में कॉल करता हूँ, पहले जब कॉल करता था तो अलग रहता था, माता पिता से बात करता था, अभी मेरे माता पिता तो भक्त है, दीक्षित है, तो स्पेसिफिकली पिताजी बात करते हैं श्रीमद् भागवतम से, वो चतुर्थ चतुर्थ स्कंद पढ़ रहे, तो बोलते ये प्रश्न है, वो प्रश्न है, ऐसा चल रहा है, उसके पहले जैसे बोल रहे थे कि ये चल रहा है, तो चर्चा होती है, माँ पढ़ रही है चैतन्य चरितमृत, प्रभु जी आए थे एक्चुअली हमारे घर में तो चैतन्य चरितमृत पढ़ रहे हो गौर पूर्णिमा से, तो वो प्रश्न पूछती है उसके बारे में, तो है हमारा संबंध जैसे माता पिता का, लेकिन मतलब है, लेकिन प्रश्न जब पूछते तो हमारा वो चर्चा वैसे पूरा कभी भौतिकवादी बनता ही नहीं। तो ये इस तरह से अगर हमारे संबंध बनते जाए तो, या फिर जैसे कुछ दिन पहले एक भक्त है, उनको मैंने कॉल किया था, तो उनकी छोटी बेटी है, वो बस साइड में बोल रही थी, तो मैं बोल रहा हूँ उससे बात करना है, 2-3 साल की है छोटी सी बच्ची, उसका नाम मीरा है, तो मैं बस पूछ रहा था मीरा कैसे हो, तो मराठी में बोल रहा था, वो बोले अच्छी हूँ, तो उसने एक प्रश्न पूछा, बोले जगन्नाथ जी कैसे है, तो मैं बोला अरे मैं पुजारी हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ, लेकिन लगा कि मैं नास्तिक हूँ, मतलब सच में वो उसके पास वो जगन्नाथ जी, उसके और एक छोटी सी फ्रेंड है लादिनी, वो बलराम जी को लेके घूमती है, बलदेव और ये है। तो मैं बोला कि मैं कभी नहीं सोचा इतने 15 दिन में जगन्नाथ जी कैसे है, मतलब मैं सोचा कि बीमार है कि नहीं। तो इस तरह से तो हम इस दुनिया में देख सकते हैं कि किस तरह से प्रभुपाद जी कृपा से भक्तों का संग मिला है, बहुत कुछ सीख सकते हैं, और इस आध्यात्मिक चेतना से ही हम खुद का विकास कर सकते हैं। वैसे तो ये बहुत बड़ा विषय है, मुझे बोलने का कुछ अधिकार नहीं, मर्यादा व्यतिक्रम भी हो सकता हो जाए, तो मैं इतना ही बता सकता हूँ, ये सब जो बताया मैंने बस इन्फॉर्मेशन बताया, दिस इज़ नॉट नॉलेज, अभी तक मेरे पास ज्ञान नहीं आ चुका है, ये बस इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन सेंटर के जैसा। लेकिन ये अभी ज्ञान में भक्तों के संग, जिनसे ज्ञान है उनसे अगर मिलेगा तो प्रगति हो जाएगा, और फिर एक दिन ऐसा हो जाएगा कि विज्ञान, ज्ञान विज्ञान संहितम, उस ज्ञान को विज्ञान में विकसित हो जाए तो वही जीवन का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो मैं सभी से आपसे कृपा आशीर्वाद की याचना करता हूँ, और मुझसे कुछ भी अपराध क्षमा कीजिए, माफ़ी मांगता हूँ, और आज थोड़ा ज़्यादा समय मैंने ले लिया आपका, तो आप सभी से मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।